नीम के अतिरिक्त तो किसी और के साथ खेल नहीं सकता, किसी और के साथ रह नहीं सकता, उसे और कोई साथी मिल नहीं सकता। ये है आर्थिक दर्शन। इसलिए मेरे भाई, मानव जीवन बड़े ही मुक्त का जीवन है। आप जीव होकर प्रभु को रस दे सकते हैं, व्यक्ति होकर समाज को प्रसन्नता दे सकते हैं। इसमें मेरा उस मात्र संबंध संदेह की बात नहीं है, किंतु कब जब आप ये सोचें तो हमें व्यक्ति होकर समाज को देना है, समाज को लेना नहीं है। लेकिन आप सोचो कि व्यक्ति होकर हमें समाज को लेना है, तब मानवता समाज, मानवता समाज, मानवता वहीं से आरंभ होती है कि जहां लेने की बात ही नहीं आती और केवल देने देने की बात आती। तो भाई मेरे, मानवता का अर्थ है देना। क्या देना, क्या देना? जो है सो सब, बोले कुछ अपने लिए नहीं, बोले अपने लिए जब तक मालूम होता है तो चाहिए, तब तक तो मानवता का आरंभ ही नहीं हुआ। आज क्या कारण है कि ईश्वरवादी का मन ईश्वर में नहीं लगा? आज क्या कारण है कि अध्यात्मवादी के मन का नाश नहीं हुआ? ये आज क्या कारण है कि भौतिकवादी का जीवन दुष्प्रेम से परिपूर्ण नहीं हुआ? केवल एक यही कारण है कि हम ये सोचने लगे, भौतिकवाद की दृष्टि से सोचने लगे कि जगत से कुछ मिलने वाली चीज है, अध्यात्मवाद की दृष्टि सोचने लगे कि भविष्य में कुछ होने वाली चीज है, और आर्थिकवाद की दृष्टि सोचने लगे कि प्रभु से कुछ लेना है। ये मानवता नहीं है। मानवता ने हमें बताया कि भाई जगत से हमें कुछ भी नहीं लेना है, जगत की भरोसे जो हमारे पास है वो प्यार पूर्वक, आदर पूर्वक, नम्रता के साथ भेंट कर देना है। ये तो हमारे और जगत के बीच की बात है। और भाई जब हमारे और जगत के बीच की बात मंजूर हो जाती है, यहीं से देखिए भौतिक दर्शन की जहां पराकाष्ठा है, अध्यात्म दर्शन का वहां आरंभ है। आप कहेंगे कैसे? भौतिक दर्शन की पराकाष्ठा क्या है? मिली हुई वस्तु, मिली हुई सामर्थ्य, मिली हुई योग्यता को भेंट कर देना। किसको? जिसको मिली है उसको। तो भाई जो कुछ मिला था वो तो भेंट कर दिया, फिर क्या हो गया? अकेले रह गए। जब भेंट करने के बाद भेंट करता रहेगा नहीं, तो ये जो अकेले रहेगा मैंने जो रस है, उसी रस का नाम स्वाधीनता है, उसी रस का नाम अमरत्व है, और यही अध्यात्म दर्शन है, यही अध्यात्म दर्शन है। किंतु जिसे स्वाधीनता में भी संतोष नहीं होता, उसके लिए आर्थिक दर्शन है। और आर्थिक दर्शन का अर्थ क्या है? आर्थिक दर्शन का अर्थ क्या है कि सुने हुए प्रभु अविचल श्रद्धा, इसके अतिरिक्त और आवश्यकता कुछ नहीं। जाने हुए में नहीं, प्रमाण से जो शुद्ध है उसमें नहीं। क्यों? क्यों कि जाने हुए में श्रद्धा की जरूरत ही नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? कि अगर जाना हुआ असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और जब जाना हुआ असत्य है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति और प्राप्ति में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। तो श्रद्धा किसमें होती है? जो किसी प्रमाण से शुद्ध हो, जिसके लिए कोई साक्षी हो रही नहीं, कोई प्रमाण जिसके लिए हो अथवा न हो, कोई साक्षी जिसके लिए हो अथवा न हो, तो बिना ही प्रमाण से, बिना ही साक्षी से यदि हम सुने हुए में श्रद्धा कर लेते हैं, उसका नाम होता है आस्था। करी आस्था क्या है? जो जिसमें आस्था ही आस्था है। बोले क्या आस्था करनी? जो प्रभु हुए, कहां हुए, कैसे हुए, तुम्हें मिले? बोले हम नहीं जानते कहां है, कैसे हैं, पर हम ये मानते हैं। बोले क्यों मानते हो? ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम क्यों मानते हो? पर मानते हैं। बोले देखो, अगर तुम प्रभु को न मानो तो अभी तुम्हारी सदगति होगा, और अगर मानोगे तो दुर्गति होगी, बोले प्रभु को मान करके दुर्गति हमें अवित है और प्रभु को नमन करके हमें सदगति अवित में। ये क्या है? ये आस्तिकता है, आस्तिकता। बोले भाई तो प्रभु को मानने मात्र से तुम्हारा क्या काम करूंगा? बोले भाई प्रभु को मानने मात्र से हमारे सब काम पूरे हो गए। क्यों क्यों पूरे हो गए? कि इसलिए पूरे हो गए कि जब हमने प्रभु की सत्ता को मान लिया है तो ये नियम है कि जिसकी सत्ता स्वीकार कर ली जाती है उसमें विश्वास हो जाता है और जिसमें विश्वास हो जाता है उससे संबंध हो जाता है और जिससे संबंध हो जाता है उसकी मधुर स्मृति उदय होती है और जिसकी स्मृति उदय होती है वो स्मृति उसको रस देती है जिसकी वो स्मृति है। क्या सोचा मेरे भाई? जब तुम्हारे जीवन से प्रभु को रचने लगा अपने क्या लेना बाकी है? अपने क्या लेना बाकी है? लेकिन आपकी दशा क्या है? आपकी दशा क्या है कि ईश्वरवाद का उपयोग होता है मोक्ष में और भोग में, मोक्ष में और भोग में। मेरे प्रभु को मानेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और प्रभु को मानेंगे तो हमारी जिनकी कृपा से कामना पूरी हो जाएगी। तो ये जो भोगवाद और मोक्षवाद क्या ईश्वरवाद है वो विचार करो। तो मानवता की दृष्टि में जब हम सोचते हैं तब ये मालूम होता है कि अगर हमने प्रभु की सत्ता स्वीकार की है तो प्रभु के रसबिंदु के लिए और अगर अपनी सत्ता स्वीकार की है तो स्वाधीन रहने के लिए और ये जगत की सत्ता स्वीकार की है तो सेवा करने के लिए। ये क्या है? ये मानवता। इस मानवता के बिना क्या आस्तिकवादी का आस्तिकवादी की जो आस्तिकता है वो जीवन हो सकती है? उस मानवता के बिना जो अध्यात्मवादी का अध्यात्म है वो जीवन हो सकता है? इस मानवता के बिना जो भौतिकवादी का भौतिकता है क्या वो जीवन हो सकती है? कदाप नहीं हो सकती। इसीलिए ये निर्णय सिद्ध हो जाता है कि मानवता में पूर्णता नहीं होता। क्यों का मेरा तात्पर्य था कि वो मानवता जो कि हम सबको प्राप्त है, जो जिसका हमारे राष्ट्रीय जीवन से विभाजन हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं किस भाई और किस बहन के जीवन में भाव शक्ति नहीं है? किस भाई और किस बहन के जीवन में विवेक शक्ति नहीं है? किस भाई और किस बहन के जीवन में क्रिया शक्ति नहीं है? जब आपके पास क्रिया शक्ति है, जब आपके पास विवेक शक्ति है, जब आपके पास भाव शक्ति है, तो भाव शक्ति के द्वारा क्या हम प्रभु में आत्मीयता नहीं कर सकते? विवेक शक्ति के द्वारा क्या हम असंग नहीं हो सकते? और क्रिया शक्ति के द्वारा क्या हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। कुछ न करना और सही करना, कुछ न करना और सही करना, इन दोनों का फल एक है। अगर आप ये कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो सरकार बुराई भी नहीं कर सकते, और कोई कहो कि हम बुराई कर सकते हैं भलाई नहीं कर सकते, तो ये कहना है कि हम बुराई करना चाहते हैं भलाई नहीं करना चाहते। तो भाव जब हम नहीं करना चाहते तब इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। इसलिए भाई क्रिया शक्ति के सदुपयोग के द्वारा हम प्रकृति का सदुपयोग कर सकते हैं और विवेक शक्ति के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक भाई प्रत्येक नहीं मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद नहीं, धीरे धीरे नहीं, चिंतन के बाद नहीं, ध्यान भावना के बाद नहीं, अभी अभी और भाव शक्ति के द्वारा प्रभु की आत्मीयता प्राप्त हो सकती है। आप कहेंगे कि प्रभु की आत्मीयता हमें प्राप्त हुई? प्रभु तो नहीं प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई प्रभु तो कभी अप्राप्त था ही नहीं, प्रभु कभी अप्राप्त नहीं था, प्रभु की आत्मीयता ही अप्राप्त थी। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वरवाद की दृष्टि से क्या कोई ईश्वरवादी ऐसा है जो ये माने कि प्रभु से देवताओं की दूरी है? मैंने तो आपको सुना नहीं। और उन्हें जो लोग देखते हैं कोई ईश्वरवादी ऐसा है जो कहे कि हाँ ईश्वर देवताओं की दूरी है, तो संघ नीति के अनुसार मैं दूसरी बात मान लेता हूं। लेकिन एक संदेह कोई विकल्प नहीं करता। क्यों? और अगर वो स्वयं भूतवासी लड़ते हैं तो मैं क्यों बोलूँ? तो तुम्हें क्या मेरा तात्पर्य है कि तुम्हें अपराध नहीं हुआ, चाहे वो निर्विशेष हो तो अपराध नहीं हुआ, सब विशेष हो तो अपराध नहीं हुआ, श्याम सुंदर के रूप में हो तो अपराध नहीं हुआ, राघवेंद्र के रूप में हो तो अपराध नहीं हुआ, सदाशिव के रूप में हो तो अपराध नहीं हुआ, शक्ति के रूप में हो तो अपराध नहीं हुआ, चाहे जिस रूप में हो अपराध नहीं हुआ, अरूप हो तो अपराध नहीं हुआ, यदि आज तक किसी को अपराध नहीं हुआ तो अपराध क्या हो गई कि आज इस प्रभु ने आतंकवादियों की आत्मीयता प्राप्त हो गई, और जब आत्मीयता प्राप्त हो गई तो प्रियता का जन्म कैसे हो, प्रियता का जन्म कैसे हो, बड़े बड़े ही आश्चर्य की बात हुई लगती है कि आज लोग प्रियता के लिए विश्वास को नापने पर अभ्यास करना चाहते हैं, तो अभ्यास ही नाराज न हो जाए, दुखी न हो जाए, निवेदन करते हैं अभ्यास छोड़ दो, लेकिन एक बात आपसे निवेदन करता हूं कि प्रियता आत्मीयता की जो प्रियता आत्मीयता से उदित होती है यह अभ्यास से, अगर अभ्यास से प्रियता उदित होती है तो अखंड हो सकती है, और आत्मीयता विश्वास से प्राप्त होती है यह अभ्यास से, सभी को यह मानना होगा कि आत्मीयता प्राप्त होती है विश्वास से अभ्यास से नहीं, और प्रियता उदय होती है आत्मीयता से अभ्यास से नहीं, से आज हम इस रहस्य पर विचार नहीं करते, और जो जो भोग प्राप्ति का कानून था कि जब कुछ करोगे सब कुछ मिलेगा, और जब कुछ करोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन सुनो आत्मा रखो कि दाखी में जब कुछ करते हो सब कुछ मिलता है, लेकिन सुनने से जो कुछ मिलता है क्या वो अपने आप नहीं सुनता, जो सुनता नहीं है तो क्या तुम कहते प्रेमी चाहिए जो अपने आप सुन लो, और तो किसी को चाहिए तो कौन मेरा कहते हैं भाई करने का जीवन में स्थान था केवल करने का राग मिटाने के लिए, करने का जीवन में स्थान है केवल करने का राग मिटाने के लिए, अपना राग मिटाना किसी ने कि जो होना चाहिए उसके होने के लिए करने का राग मिटाया जाता है, जो होना चाहिए उसके होने के लिए, तो क्या होना चाहिए तो प्रीत होना चाहिए, तो बोध होना चाहिए, तो योग होना चाहिए, तो कर्तव्य होना चाहिए, होना चाहिए जो होना चाहिए उसके होने के लिए कर्मों के राग का नाश किया जाता है, और कर्मों के राग का नाश करने के लिए कर्तव्य की बात कही जाती है, कही जाती है, तात्पर्य क्या निकला कि कर्तव्य पालन करने से राग मिटाने का साधन है, जैसे किसी किसी भाई क्या कर्तव्य है, बक्ता का क्या कर्तव्य है कि मीठा बोले, सत्य बोले, हितकर बोले, और श्रोता बोले पूरी शक्ति लगाकर ईमानदारी से सुने, तो ये जो सत्य बोलने की जो बात आई कि किसके लिए आई, जो झूठ बोलता है उसके लिए, किसने कभी झूठ में बोला उसके लिए, कैसे तो प्रिय बोलने की जो बात आई है किसके लिए आई, जो सच बोलता है उसके लिए, जिसने कभी सच में बोला उसके लिए, और हितकर बोलने की बात आई किसके लिए, जिसने हितकर बोला हो, और दान देने की बात आई किसके लिए, जिसने संग्रह किया हो, मैं सोचता हूं आपको, अरे जिसने संग्रह नहीं किया उसके सामने भी दान देने की बात आती है, अरे भैया जिसने पाप किया है उसे पराजित करना पड़ता है, हम झूठ बोलेंगे तो सत्य बोलना पड़ेगा, अगर हमने सच बोला हो तो मदर बोलना पड़ेगा, अगर किसी का बुरा चाहा हो तो भला चाहना पड़ेगा, तो मेरा बात करिए ये जो कर्म करने की जो बात कही जाती है ये तो गलत करने की आदत मिटाने के लिए कही जाती है, लेकिन जिस समय हम सही करने लगते हैं उसके दो फल बनते हैं सही करने के, एक फल तो ये बनता है कि सही करते ही सुंदर समाज का निर्माण होने लगता है, अपना ये पहचान है कर्तव्य की, इसी में हमेशा कहता हूं कि जिस देश में कर्तव्य निष्ठ प्राणी रहते हैं, जिस जाति में कर्तव्य निष्ठ प्राणी होते हैं, जिस समाज में कर्तव्य निष्ठ प्राणी होते हैं, उस समाज को राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती, और जिस समाज को राष्ट्र की आवश्यकता होती है उस समाज में कर्तव्य निष्ठ प्राणियों का अभाव रहता है,
आपसे ही बड़े आते की बात, क्योंकि आपसे कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो भाई। सलमान से मैं कर्तव्यनिष्ठ होते तो आपसे किसी आगे नहीं बताओ, मैं आपसे पूछता हूं अगर आप बल का दुरुपयोग न करें तो पुलिसी नहीं करोगी। अगर आप अपनी सास वस्तु के लिए भंग दे रहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलना पड़ता, मैं आपसे पूछता हूं कभी नहीं खोलना पड़ता। तो जहां अकर्तव्य होता हो वहां शासन आता है जीवन में, और जहां कर्तव्य होता हो वहां शासन से मुक्ति मिलती है। आज हमारा कुटुंबी जनों से शासित, पड़ोसियों से शासित, राष्ट्र से शासित, धर्म कर्म से शासित, मतलब क्या अकर्तव्य अकर्तव्य अकर्तव्य। तो ये जो आज जीवन में स्वाधीनता नहीं है, क्यों नहीं उतरता जब तक अपने उधर कोई शासन न करो। ये पराधीनता केवल इसलिए जीवन में है कि हमें हमने कर्तव्य परायणता को नहीं अपनाया, अर्थात मिले हुए का सदुपयोग नहीं किया। तो जब तक हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करेंगे शासित रहेंगे, हमारे ऊपर दूसरों का शासन रहेगा नहीं मिल सकता। पद्धति बदल सकते हैं, शासन नहीं बदल सकते। चाहे रानी के पेट से राजा का शासित होगा और चाहे प्रया के पेट से निकले हुए प्रयाग मिश्र से शासित होगा, चाहे मजदूर के पेट से निकला हुआ सुखी तुम पर शासन करे और चाहे सेठानी के पेट से निकला हुआ सोच तुम पर शासन करे। अरे भाई जब तक कर्तव्य परायणता नहीं होगी तब तक शासन से मुक्ति नहीं हो सकती, और जब तक शासन से मुक्ति नहीं होगी तब तक मानवता कैसी। क्या बोली मानव है जो पशु के द्वारा सेवक कर लिया है? ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं रख सकते। मतलब क्या? गलत करते हैं इसलिए नहीं कर सकते, गलत रखते हैं इसलिए नहीं रख सकते। तो भाई अकर्तव्य के रहते ही हम पर दूसरों का शासन रहेगा, मुक्त नहीं सकता। और कर्तव्य पालन करते ही हम शासन रहित हो जाएंगे तो क्या मनमुखी हो जाएंगे? क्या जो चाहे से करदार से हो जाएंगे? तो नहीं, जो करना चाहिए वो करने लगेंगे और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। किसी का नाम है कर्तव्यनिष्ठ होना। जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति न हो और जो करना चाहिए वो सुखम होने लगे। आप किसी भाई से पूछो कि बल का दुरुपयोग करना चाहिए, इतने लोगों ने कोई बता सकते? आप ये चाहते हैं कि जो दूसरे पर बल का दुरुपयोग करें? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो चाहते बताओ। तो जब आप ये चाहते हो कि बल का दुरुपयोग कोई न करें तो क्या हम तो सोचते कोई ना कोई चाहते कि हम करें दूसरे को? अगर ये चाहते हो भाई तो तुम्हारी क्या भूति है, और अगर ये चाहते हो न हम करें न कोई दूसरे करे, बड़ी सच्ची चाह। तो इसका इसका परिचय कैसे होगा, इसका प्रचार कैसे होगा? तुम इसके प्रचार का तरीका मानव सेवा से मैंने ये बताया कि भाई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो मगन हमारा जीवन होगा और राष्ट्र की हमें आवश्यकता न होगी। जो बल का दुरुपयोग बलपूर्वक रोकने के लिए राष्ट्र का निर्माण हुआ, और बल का दुरुपयोग न इच्छापूर्वक न करने के लिए आप बताने के लिए मगन का अर्थ हुआ। लेकिन आज राष्ट्र भी सफल और मगन भी सफल, क्यों भाई? मानवता नहीं थी। यदि मानवता हो तो राष्ट्र की राष्ट्र भी सफल हो जाए, और यदि मानवता हो तो मगन भी सफल हो जाए। क्या क्यों कह लो मेरा बीच की बात, ऐसा कह दो कि अगर मानवता आ जाए तो न राष्ट्र की अपेक्षा रहे और न मजहब की अपेक्षा रहे। इसका आपको ये न समझ देते भाई कि मैं किसी मजहब को मानता नहीं हूं, मैं तो बड़ा खत्म हो गई हूं, लेकिन मैं मजहब को मानता हूं साधन का प्रतीक। मैं मजहब को ये नहीं मानता हूं कि हम विवाद करें हमारा मजहब बहुत अच्छा है, लेकिन खुद तो हमारे जीवन से इसका कोई संबंध नहीं। तुम अपन को नहीं मानते नास्ते को, हम इसे मानते हैं। अच्छा भैया ठीक, आप जिस चीज को मानते हो उसमें सच लग गया, बोले सोचे नहीं में लगा तो कौन नाश्ते सीख लिया? बोले तुम बहुत बड़े, तुम्हारा मगर बहुत ही छोटा है। बोले क्या? तो तुम आत्मा को सत्ता नहीं मानते? अच्छा वो तुम मानते हो ना, नहीं तो देखो क्या तो डर तो लगता है, लोग है क्या तो लोग तो है, तो तुम आत्मा को सत्य तुम मानते हो, हम नहीं मानते वो खुद तो कहने को हमारा साथ कर रही है। आज हमारा मजहब हमारे जीवन से अलग दिखाई देता है, तो जो मजहब जीवन से अलग है क्या समझते हो आपका मजहब है, वो मजहब मजहब नहीं बाकी नहीं होता, तो मजहब तो है पर आपका मजहब नहीं है, आपका मजहब वो हो सकता है जो आपके जीवन में हो, और वो मजहब सब जीवन में से निकलेगा कि जब हम मिले हुए का सदुपयोग करें, अगर हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर सकते तो हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते, और जब हम अपने मजहब को अपने जीवन से नहीं बता सकते तब क्या होगा, तब मजहब हो जाएगा संघर्ष का साधन, और फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी तो सकूल और उसके तब क्या होगा आपकी दशा मजहबियों का दशा होगी, धर्म अनुदूप लो, अरे मेरे भाई जब धर्म जीवन में नहीं था तब कभी हार नहीं थी, तब कभी हार नहीं थी, तो क्यों ना मेरा तात्पर्य है कि मानवता की हमें सिद्धि नहीं मिल सकती, सिद्धि नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती कि मानवता ने हमें एक ही बात बताई और वो ही बताई कि मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये बात बताई हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा जो होगा ही नहीं जो नहीं होना चाहिए वही होगा जो होना चाहिए, और दूसरी बात क्या बताई कि हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे, जब हम विवेक का अनादर नहीं करेंगे तब क्या होगा, बच्चों की वास्ता रहेगी, व्यक्तियों की वास्ता रहेगी, कामना रहेगी, विकार रहेगा नहीं रहेगा, तो जो विवेक का अनादर नहीं करते ये निर्विकार हो जाते हैं, और जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है, जब निर्विकारता जीवन में आ जाती है तब जो होना चाहिए वो सुख होने लगता है, जो मिलना चाहिए वो सुख मिल जाता है, इस दृष्टि से भाई बल के सदुपयोग में विवेक के आदर में मानवता निहित है और मानवता में पूर्णता निहित है, इसके आगे की बात आज का जो व्याख्यान है उसे निवेदन करने की कोशिश करेंगे, होगा क्या प्रयोग मेरे नाथ आप अपनी सुधा मई सर्व समर्थ कथित कारणी रहित की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर सुख दुख हो जाए।